Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Pukaro Everybody chant
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Radhe Hey Radhe Hey Gopal
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Pukaro, hriday se pukaro.
Gopal, hey Gopal. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Gopal, Hare Gopal, Gopal, Gopal. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Radhe Gopal. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Radhe Radhe Govinda
Radhe Radhe Govinda Radhe Radhe Govinda Jai Prabhupada Jai Prabhupada Prabhupada Jai Prabhupada Jai Jai Sri Radhe Jai Jai Sri Radhe Srila Prabhupada ki jai श्री श्री लाडली लाल की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस 14 फरवरी के संध्या के सत्संग में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। पूरा विश्व आज एक विकृत प्रेम भावना को अनुभव करने में व्यस्त है ना? आप लोग इतना भी भूलना चाहेंगे तो आपको व्हाट्सएप मैसेज आएंगे याद दिलाने के लिए कि हम कैसे परवर्टेड हैं। तो कुछ चीज को अगर विकृत समझना है, विकृत है, तो पवित्रता और सर्वोच्च क्या है ये भी पता होना जरूरी है। सर्वोच्च प्रेम कहानी क्या है पता होना चाहिए। सच्चा प्यार क्या होता है पता होना चाहिए। तो फिर आपको जब ये पता चलता है कि शुद्ध चीज़ क्या है तो फिर मिश्रित चीज़ क्या है वो भी पता चलेगा। लेकिन जब शुद्ध चीज़ का पता नहीं होता है तो मिश्रित चीज़ को ही हम सच्चा मान बैठते हैं। जो झूठ बूठ का प्यार होता है उसको सच्चा प्यार मान बैठते हैं, क्योंकि सत्य प्रेम क्या है हमको पता नहीं है। तो पश्चिम जगत में एक बार कुछ भक्त लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपके पास कोई लव स्टोरी का किताब है क्या? भक्त लोगों को गीता बेच रहे थे। तो बोलते यू हैव एनी लव स्टोरी बुक? तो उन्होंने उनको नेक्टर ऑफ डिवोशन दिखाया। देखो दिस इज लव स्टोरी, द बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड आर स्विंगिंग ऑन द झूला, नेक्टर ऑफ डिवोशन एंड एवरीथिंग अबाउट लव इज एक्सप्लेन इन दिस। हाउ टू लव, what are the principles of love, what are the basics of love, what are the heights of love, what are the details of love, it's all explained here. ऐसे बताया उन्होंने, और हकीकत है वो। भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ में सारा प्रेम का रहस्य समझा दिया है कि प्रेम क्या वस्तु है, प्रेम क्या चीज है, और हमारी भूख और प्यास किधर है, और किससे संतुष्ट हो सकती है, इसका पूरा ज्ञान दिया है। फुल टेक्निकल नॉलेज गिवन देयर। और उसके बाद टेक्निकल नॉलेज देने के बाद में फिर असली प्रेम कहानी शुरू होती है। लव इन हैप्पीनेस, लव इन स्माइल, लव इन लाफ्टर, लव इन बिविल्डरमेंट, प्रेम वैचित्र्य, ऐसे अनेक प्रकार के प्रेम, क्रोधयुक्त प्रेम, प्रेम में डिप्रेस हो जाना, प्रेम में उदास हो जाना, प्रेम में जो जो से हंसना, प्रेम में बेहोश हो जाना, ये सबका वर्णन दिया है उस किताब में। उसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रस के अमृत का सागर।
एक ग्लास नहीं, कटिंग सागर है प्रेम का। और जब तक हमारा जीव रूपी मत्स्य मछली जब तक उस प्रेम सागर में गोता नहीं लगाती है तब तक वो संतुष्टि नहीं प्राप्त करती। सब लोगों को ढूंढना है प्रेम, सच्चा प्रेम ढूंढने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। एक्चुअली सब कुछ खोज में, महाप्रभु चैतन्य में बोलते ना, सर्वात्मस्तपनम परम विजयते श्री कृष्ण संगीत। जिस प्रेम को पाने के लिए हम हमेशा तड़पते रहते हैं वो प्रेम इस भक्ति में प्राप्त होता है, इस भगवान नाम के कीर्तन और जप में प्राप्त होता है। और जब इस प्रेम की पहचान हमें हो जाती है, वो प्रेम का थोड़ा सा अनुभव मिल जाता है तो हृदय संतुष्ट होता है, वहीं से शुरू होता है संतुष्टि। व्यक्ति धनी और ऐश्वर्य संपन्न तब बनता है जब वो संतुष्ट होता है। सारे जो अमीर लोग होते हैं ना उनको शास्त्र की दृष्टि से दरिद्र कहा गया है। बिलियनियर्स आर दरिद्री, क्यों? बिलियंस और अब्जोवधि रुपया कमाने के बाद भी वो असंतुष्ट है इसलिए वो दरिद्री है। और जो दो रोटी कमाकर भी संतुष्ट है वो अमीर है। भगवान का गणित अलग होता है, हमारा दुनिया का गणित अलग होता है। वो फोर्ब्स के लिस्ट में कौन आ रहा है फर्स्ट, कितना बिलियन डॉलर उसके पास धन है, और टॉप में कौन चल रहा है वर्ल्ड में, हमारा नंबर कितना है, हमारे दुनिया भारत के धनी लोगों का नंबर कितना है, ये सब जो है ये सारे दरिद्रों की लिस्ट है। सॉरी टू से, हमारे पास कोई किसी का वैयक्तिक दुश्मनी नहीं, हमारी हम केवल शास्त्र के आधार पर बोलते हैं। अगर संतुष्टि होती है तो कोर्ट पे नहीं लड़ते, और चाहिए, झगड़ा नहीं करते, जितना मिला है ठीक है, आराम से रहते, वो धन है जीवन का। संतुष्टि मन के शुद्धि का एक लक्षण है, समाधान। और वो संतुष्टि हम केवल कृष्ण प्रेम में ही प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आत्मा की जो आत्मा का जो स्थायी भाव है, द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर, वो भगवान से मिलता जुलता है और वो प्रेम पर आधारित है, प्रेम पर वो स्थित है। इसलिए आत्मा की संतुष्टि की शुरुआत ही इससे होती है। जब तक दुनियादारी में सब जगह हम प्रेम भटकते घूमते हैं तो केवल दरिद्रता उदासीनता ही हमारे जीवन में आएगी। प्लीज अंडरस्टैंड, आप लोगों में से किसी का प्रेम भंग हो गया है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। हार्ट ब्रेक अगर हो गया है किसी का बाय चांस, आपको पता चलेगा ये सब झूठ है, कुछ समय के रिश्ते हैं, ये कभी हृदय को संतुष्ट नहीं कर सकते। सब स्वार्थ पर आधारित है, इंद्रिय भोग पर आधारित है, मुझे क्या मिलेगा इस भावना पर आधारित है। लेकिन श्री कृष्ण के पर जो प्रेम करेगा कभी धोखा नहीं खाएगा। इसलिए सब सहारे छोड़ो और श्री कृष्ण का और राधा रानी का सहारा लो, वो एक ही शाश्वत सहारा है, भगवान का सहारा लो। बाकी सब सहारे जो है वो ऐन मौके पर डूबते हुए नजर आते हैं। वो सब डूबते रहे भंवर में बिचारे, सहारा लिया था जिस जिस का हमने। वो सब डूबते रहे भंवर में बिचारे, वो चाहते हैं आपको सहारा देना, ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते, लेकिन नहीं दे सकते हैं। समय के भंवरे में डूब जाते वो ऐन मौके पे, जब किनारा पास वो में होता है उसी समय नाव डूब जाती है, पास में दिख रहा है किनारा, लेकिन क्या करें, सत्य है दुनिया का। इसलिए सब पर प्रेम करो, जो आपके रिश्तेदार है, फैमिली मेंबर्स है, सब पर प्रेम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हमने अभी कथा सुन लिया, अभी हरे कृष्णा मैं जा रहा हूँ ऐसा झूठ मूठ का वैराग्य लाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रहो, सब पर प्रेम करो, लेकिन हृदय जो है वो कृष्ण को दो। हृदय यहाँ मत बांटो, हृदय यहाँ बांटेंगे ठोकर खाना ही है आपको, निश्चित रूप से गारंटी है इसकी। आपको अगर सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति मिल भी गया पत्नी के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, तो समय उसको छीन लेगा आपसे मृत्यु के रूप में, फिर आप तड़पते रहेंगे कि एक था जिसके सहारे में जी रहा था। ये हमारा जीवन का सार है। वो जो थे हमारे, बोलो क्या आगे एनी वेस्ट हो गए, वो जिसको हमने अपना समझा था वो चले गए। जब नैया का किनारा साथ में आने वाला था तब कश्ती डूब गई। इसलिए दिल से भगवान के साथ पेश आओ और दिमाग से दुनिया के साथ पेश आओ। जब दुनियादारी करना है दिमाग से काम लो, भगवान से रिश्ता जोड़ना है दिल से काम लो। हम लोग एग्जैक्टली उल्टा काम करते हैं, भगवान के विषय में दिमाग से काम करते हैं और दुनिया को दिल देते हैं। फिर वो दिल तो टूटना ही है ना, उसके टुकड़े होने ही हैं। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, माया देवी जो है ना वो सबके दिल के टुकड़े कर रही, आराम से आपका मजाक देखती रहती है। कैसे ये लोग खिलौने लेकर खिलौना टूटने पर रोते रहते हैं, हाँ माया देवी एक खिलौना फेंकती है, टूटने वाला खिलौना जो कुछ समय बाद टूटने वाला है, आप उसमें दिल लगाते हो वो टूट जाता है, फिर आपका दिल भी टूट जाता है। इसलिए अभी बेवकूफ मत बनो इसके आगे, सब कर्तव्य निभाओ अच्छी तरह से अपने, कोई भागने की जरूरत नहीं। नो आर्टिफिशियल एनाउंसिएशन बट ट्रू अटैचमेंट टू कृष्णा। झूठ मूठ के वैराग्य की जरूरत नहीं है, भगवान से प्रेम करो, उनसे आसक्ति बनाओ, अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपके जीवन में, सब कुछ लाइन में आते हुए दिखाई लगेगा, दिखाई पड़ेगा आपको। तो ऐसे हमारे भगवान राधा और कृष्ण कभी किसी को धोखा नहीं देते, जन्म जन्मांतर में धोखा देते हैं। हमारे दुनिया में एक जन्म में भी अनेक धोखे प्राप्त होते हैं रिश्तों और नातों में, है होते कि नहीं होते। कोई मृत्यु के द्वारा खत्म हो जाता है तो कोई मृत्यु की जरूरत नहीं है, पहले से ही खत्म। हाँ लव एट फर्स्ट साइट डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, क्या करें दुनिया का हिसाब किताब ऐसा है। एक जीवन में कितनी ठोकरे खाते हैं हम, असं मराठीत म्हणतात ना रापतो आपण, रापतो त्या उन्हामध्ये त्या अग्नीमध्ये हम लोग असे जल जाते हैं पूरे क्योंकि दुनिया में कोई सुख और प्रेम का व्यवस्था नहीं बनाया है। इधर सुख और प्रेम चाहिए तो एक ही स्टेशन है उसका, वो है राधा कृष्ण के चरण कमल। जब उनमें दिल लगाएंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे, कभी आपकी नैया नहीं डूबेगी, कश्ती नहीं डूबेगी, हर समय किनारे में सुरक्षित रहेंगे आप। वो हमारा सहारा है। अशोक अभय अब क्या एको न बुझीनु प्रभु तोमारा चरण, अशोक भयामृत पूर्ण सर्वखान। आपके दो चरण कमल सुख और प्रेम के सागर है, कान है, उगम है, उसके स्रोत है, बस दिल लगाना वही है और कहीं नहीं। सब लोग वहीं पर अपना सुकून शांति आश्रय प्राप्त करते हैं। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। जो जो अपने आप को बेसहारा समझते हैं उनका सहारा यहां पर है। राधा रानी के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं। अब दुख है आपके पास, राधा रानी के पास जाओ, वो सबके दुख को मिटा देती है। आप उतना दुख नहीं झेल सकते हैं या अनुभव नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, उतने दुखों का निवारण वो कर सकते हैं। ऐसा कोई दुख नहीं जिसका वो निवारण नहीं कर सकती। अगर सच्चा सहारा हो तो हर प्रकार का दुख दर्द आपका मिट जाएगा, कोई तड़पने की जरूरत नहीं है। यहां वहां दिल लगाकर दुख भोगने की कोई जरूरत नहीं, एक ही जगह दिल लगाओ और सारी पूर्ति प्रेम के आपके वहां हो जाएगी। ऐसा स्टेशन ही है, स्वयं कृष्ण भी अपना प्रेम और सुख और शांति आनंद ढूंढने के लिए यहीं आते हैं, और जो कृष्ण भी नहीं मिटा सकते हैं उसको वो मिटाती है राधा रानी, यहां का महिमा है। इसलिए वो कृष्ण जो है आधाय मूर्दति यदा पुरदार गोप्यः काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छमौले भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणुम अहम स्मरामि। जो व्यक्ति श्री राधा के चरण कमल अपने शीश पर धारण करते हैं, यानी कि उनका आश्रय लेते हैं, उस प्रकार से ऐसा कार्य करने से सबसे उदार हृदय गोपियां हैं, उन्होंने यशस्वी रीति से श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों का प्राप्ति किया है। राधा रानी के चरण कमलों का आश्रय लेके श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कर ली है। वो अति दयालु सर्वोच्च दयालु राधा रानी श्री कृष्ण के प्रति दिव्य भक्ति के रसों को उसे प्रदान करती है जो बड़ी भावना से उनसे पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उस राधा रानी के दो चरण कमलों पर मैं मेरा ध्यान करता हूं। तम राधिका चरण रेणुम अहम स्मरामि। और यहां लिखा है कि यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालाक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणुम अहम स्मरामि। बहुत लोगों का नाम दिया इसके अंदर, ब्रह्मा जी, शिव जी, सुखदेव, नारद मुनि, भीष्मदेव जैसे महान महान भक्तों का नाम दिया है। इनको अनंत काल तक तपस्या करने के बाद भी श्री कृष्ण को पकड़ नहीं सकते हो, बहुत मुश्किल काम है। श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त करना सहज नहीं है, लेकिन श्रीमती राधा रानी उसी श्री कृष्ण का मन जो है बहुत आसानी से मोहित कर लेती है। सद्यो वशीकरण चूर्णम, ऐसे उनके पास कला है कि वो कृष्ण को वश कर लेती है, अपने अनंत प्रेम की शक्ति से वो कृष्ण को वश कर लेती है। ऐसी राधा रानी को उनके चरणों के चरण रेणु, उनके चरणों में जो अणु रेणु रूप रेणु रूप जो धूल है रज है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे हमारे प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं राधा सुधानिधि में। राधा सुधानिधि मतलब क्या? राधा रानी नाम का जो अमृत है उसका निधि है वो, यानी उसका सागर है, उसका स्रोत है, उसका स्टॉक है, ट्रेजरी है उसकी। ऐसे सुंदर शास्त्र उन्होंने लिखा है, अति उत्कट प्रेम के भावनाओं का वर्णन किया है। तो कहते हैं उनकी राधा रानी की चरणों की जो पूजा है वो एक अति उत्कट भावनाओं का महोत्सव है। राधा रानी के चरणों की पूजा करना यानी एक अति उत्कट प्रेममयी भावना का उत्सव है, महोत्सव। जिस महोत्सव में कोई दुखी नहीं रहता है, केवल आनंद को प्राप्त करता है। सब दुख होते हुए भी दुख के स्तरों से उठकर दिव्य आनंद की अनुभूति निरंतर करते रहता है, वैसा आनंद ही। ये बात मत समझना कि अब जब हम भक्ति करेंगे राधा रानी की तो जीवन के दुख नहीं आएंगे, जीवन में दुख आते रहेंगे। वो तो जब तक देह धारण किया हुआ है वो देह का स्वभाव है, वो दुखों को लाएगा ही। वो जिस चीज को हमने अपना के रखा है वस्त्र के रूप में शरीर, वो तो दुखों का सागर है। शरीरम व्याधि मंदिरम, मन तो उसके आगे का मंदिर है बहुत बड़ा, सब प्रकार के व्याधियों का सूक्ष्म और स्थूल उसका सागर मन है, सब दुखों का जड़ है मन है। तो जब तक ये माँ हम पे लगे हुए हैं तब तक तो दुख आएगा ही जीवन में, लेकिन राधा रानी और कृष्ण भगवान के चरणों की भक्ति करने के बाद में ये दुखों के होते हुए भी उस दुखों का स्पर्श आपको नहीं होगा, उसका अनुभव आपको नहीं मिलेगा, उससे आप सफर में दुखी नहीं होंगे, पीड़ित नहीं होंगे, आप उससे चलता रहेगा बाजू बाजू में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का 10,000 का पॉकेट किसने लूट लिया, समझो पॉकेट मारने, तो वो दुखी हो भी सकता है या ओके बोल सकता है और आगे चल सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो हमारे श्रीधर महाराज कहते थे कि पेन इज इनविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। पेन आएगा आपको, लेकिन उससे पीड़ित होना है कि नहीं होना, ये आपके हाथ में है। वो पेन होते हुए उससे परे रहना या पेन में रोते रहना, ये आपके हाथ में। तो राधा रानी के चरणों की भक्ति करने के बाद में दुख तो आपको आएगा, लेकिन आप दुखी नहीं होंगे, ये बड़ी रहस्य की बात है। और रूप गोस्वामी भी समझाते हैं, भक्ति मार्ग का एक रहस्य है कि तत्क्षण शुद्ध भक्ति मार्ग अपनाने से हमारे दुखों का अंत होता है, क्लेश अग्नि उधर ही समाप्त होता है। इसका मतलब बाह्य जीवन के ताप समाप्त नहीं होते हैं, त्रिविध ताप जो मिलने वाले हैं, त्रिगुणों के ताप मिलने वाले हैं, वो समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन आप नहीं उसमें लिपटेंगे, आप मुक्त हो जाएंगे उससे। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको दुनिया के तापों से मुक्त नहीं होना है, बताओ? सब लोग वो आनंदमयो भ्यासात, आनंद की खोज में तड़प रहे हैं, हाँ विराट टू मुंबई ट्रेन में लटक रहे हैं सब लोग, क्या क्या नहीं करते हैं बताओ, आनंद की खोज में करते हैं, इन द होप दैट वी विल गेट हैप्पीनेस। इतनी मेहनत करते हैं जो इतनी आसान नहीं है करना, फिर भी करते रहते हैं, उस स्थाई भाव के खोज में जो हमारा मूल स्वभाव है, उसको प्राप्त करने के लिए मिलेगा कहीं ना कहीं सुख मिलेगा, इसलिए मेहनत करते रहते हैं। उतनी हमारे भक्ति रसामी महाराज कहते हैं कि जितनी मेहनत हम दुनिया में सुखी होने के लिए करते हैं, उतने अगर राधा कृष्ण की भक्ति में करते तो कब के शुद्ध भक्त बन जाते, कब के। बिलो मंगल ठाकुर जब गए थे वेश्या के पास, तूफान में, बाढ़ में और आंधी में गए थे, मुर्दा को पकड़कर गए थे, वो ये समझ करके लकड़ी है लेकिन वो मुर्दा था एक्चुअली, उसको पकड़कर तैरते हुए बाढ़ आई हुई नदी को पार करके चले गए वो। फिर वो इतना घर जो था एक मंजिल का था वेश्या का, वो ग्राउंड फ्लोर पानी से भर गया था पूरा, तो वो पहले मंजिल पर जाके बैठी थी। तो ये एक डोरी जो लटक रही थी उसको पकड़कर ये पहले माले पे गए, खिड़की से कूदे, लेकिन वो डोरी नहीं थी, वो मरा हुआ सांप था। और इतने में इतना मेहनत करके वो इस साइड से नदी पार करके उस साइड पहुंचे और खिड़की से अंदर कूदे, तो वेश्या को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे आज भी आए तुम, इतनी मेहनत, इतना निश्चय, इतनी लगन अगर कृष्ण में होती तो आज तक वैकुंठ में पहुंच गए होते आप। एक मेरे यक्षिणी शरीर को भोगने के लिए तुमने इतना मेहनत किया है, इम्पॉसिबल है यहां पर आ जाना, फिर भी तुम आ गए इतनी कठिनाइयों को सामना करते हुए, काश तुमने इतनी मेहनत श्री कृष्ण के लिए की होती। उधर ही प्रकाश आया हृदय में उसके, वो वेश्या उसकी पुराने जन्म की गुरु थी, गुरु ने सही समय पर उसको ऐसा कठोर उपदेश किया, उसी समय विरक्त हो गया वो। और फिर आगे जाके बिलो मंगल दास ठाकुर बने, वो परम संत बने। वो मैसेज क्या है हमारे लिए कि जितना दिल हम दुनिया की चीजों में लगाते हैं, उतना ही दिल अगर भगवान पे लगाया ना तो हो गई आपकी भक्ति, परिपूर्ण हो जाएगी आपकी। लेकिन नहीं लगाते हम, इतनी दयालु राजा रानी है, पतित से पतित जीवों को भी तारती है वो, लेकिन हम जाना नहीं चाहते उधर, अपना पतित स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं हम लोग, भोग की लालसा में पतित बनना पसंद करते हैं, क्योंकि हमको भोग चाहिए। डोंट माइंड बीइंग फॉलन, बट आई वॉन्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो यहां पर आकर हम पतित जीव प्रार्थना करते हैं कि ऐसे पतित जीवों का सहारा तो एक ही है जो पतित होके भी गोद में रख सकते हैं हमको। ललिता को आदेश दिया उन्होंने, कितना भी पतित जीव हो अगर मुझ में इतनी भी आसक्ति रखता हो, ले आओ उसको, हम उसको ट्रेन करेंगे अपने पास, बढ़िया बनाएंगे उसको, और बढ़िया बना के श्री कृष्ण को ऑफर करेंगे उसको, लेकिन सहारा देंगे उसको, ठुकराएंगे नहीं, अनक्वालिफाइड करके ठुकरा नहीं देंगे, सो लेके आएंगे। तो जितनी दयालु श्री राधा रानी उतनी ही दयालु, उससे ज्यादा दयालु उनकी सखियां। तो राधा रानी परम 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 दयालु है। एक तो भोली भाली है, वो किसी के अंदर पाप देखती नहीं है, खाली इच्छा देखती है कि इच्छा है भगवान को प्राप्त करने की, तुरंत स्वीकार कर लेती है। इनकी दया जो है वो उसकी कोई पार नहीं लगा सकता है। मैं आपको कहानी बताऊंगा एक, कि इनकी दया कितनी अपरंपार है, इनकी करुणा कितनी असीम है। आप सब लोगों ने कहानी सुनी है ना अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा द्रोण का पुत्र था और दुर्भाग्य से या पूर्व कर्मों से कहिए, उनके पिताजी नौकरी पे थे कुरु वंश में। यथावकाश दुर्योधन युवराज बना, धृतराष्ट्र राजा बने और वो युवराज बना, तो उनके यहाँ पर नौकरी कंटिन्यू हो गई गुरुकुल में विद्यार्थी के रूप में। अगर नमक खाया उन्होंने तो उनका पुत्र भी उसी में पला। तो अश्वत्थामा दुर्योधन के पक्ष में गया, और केवल पक्ष में नहीं गया, दुर्योधन के दुर्गुण भी उसने शेयर किए। संग ऐसा होता है, आप अगर कोयले के खान में घुसोगे तो काले रंग से कितना बचोगे, कहाँ तक बचोगे, नहीं बच सकते। तो दुर्योधन जैसे व्यक्ति के संग में जाएंगे तो दुर्गुण से कितना बचोगे, आप कहाँ तक बचोगे। दुर्योधन के गुरु के पुत्र हो लेकिन दुर्योधन के मित्र हो तो गुण तो लगेगा ही उसका। तो काफ़ी स्वार्थी बना वो, हिंसक बना, सब कुछ बना। और क्या उसने दुर्योधन के संग में जीवन भर प्राप्त किया वो उसमें अंत में दिखाया उसने। जब परीक्षा हुई तो उसने अपना रंग दिखाया। तब तक अश्वत्थामा के बारे में आपको कोई ऐसा लगेगा नहीं कि उतना भयंकर पाप किया उसने। लेकिन जब उसके जीवन में जब कसौटी का समय आया, मतलब when we say like this, when you are put under stress, the real you comes out. जब भी आपको कोई संकट आता है जीवन में तो आप सही में क्या हो उसका दर्शन लोगों को होता है। आपका मूल जो सही भाव है वो प्रकट हो जाता है, आपके अंदर क्या है, when you are put under stress। तो जब वो महाभारत में देखा कि मेरा प्रिय मित्र दुर्योधन का वध हुआ, उसके जंगा पर प्रहार किया गया, वो आकाश में उड़ गया बहुत दूर तक और भयंकर असह्य वेदना में गिर गया नीचे, तो उसको देखकर हा नहीं गया वो, मैं अभी इसका बदला लूंगा। तब उसका जो सही अंदर का स्वरूप था, जो उसने दुर्योधन के संग में बना लिया था बाय मेनी मेनी इयर्स ऑफ एसोसिएशन, जो उसने प्राप्त किया था वो बाहर आ गया। रात में गया वो, जो कभी भी कोई योद्धा नहीं करता है। योद्धा कभी भी निहत्य पर वार नहीं करता है। योद्धा कभी भी अगर रथ में खड़ा है तो बिना रथ के योद्धा पर वार नहीं करता है। कई सारे नियम फॉलो करते हैं युद्ध में, सही योद्धा होता है। और सोते हुए तो चांस ही नहीं है, तो सो रहा है तो युद्ध करने को खड़ा ही नहीं है, वो तो सो रहा है बिस्तर में आराम से, खर्राटे भर रहा है। तो जब पांडु पुत्र जो है वो तंबू में सो रहे थे तो इनको लगा कि पांडव ही है, अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ा। पांडव के तंबू में गया और एक जगह से उसने आग लगा दी, एक रास्ते से, एक प्रवेश द्वार से, और दूसरे प्रवेश द्वार में वो खड़ा रहा तलवार लेकर। जो भी भागते भागते आया सबका सर काटा उसने। फिर अंदर गया और देखा कि पांच वीर अभी भी सो रहे हैं, तो निद्रा में उनका वध किया उसने। इतना भयंकर कृत्य किया उसने, क्योंकि उसने जो दुर्गुण का संग किया था वो दुर्गुण का वहां पर प्रकट हो गया, पूरा भर भर के बाहर आया, बाढ़ आकर हृदय से उसके दुर्गुण, उसका दुर्मति जो थी वो सब बाहर प्रकट हो गई। तो जब ये पता चला अर्जुन को तो अर्जुन इतने क्रोधित हो गए, भीम इतने क्रोधित हो गए, वो उसको वहीं पर कुचल के मारना चाहते थे। लेकिन जब पता चला कि अर्जुन और भीम दोनों अपनी गदा, अपना धनुष और गदा लेकर निकले हैं, ये समझ में जब आया उसको तो भाग गया, वो रथ लेकर भाग गया। तो फिर इन्होंने भी रथ लिया और धनुष ताने हुए, गदा हाथ में उठाते हुए कृष्ण भगवान उनको लेकर चल रहे हैं, भाग रहे हैं, वो भी हवा की गति से भाग रहा है। अभी वो तो जीवन समाप्त होने को आया उसका, क्या बचेगा वो अर्जुन और भीम के सामने जो क्रोध से व्याप्त है पूर्णता से, इनकी आंखों में खून सवार है, अर्जुन के आंखों में खून सवार है, तो क्या कौन बचेगा उसके हाथ से। तो इतने भागे वो, इतने भागे उसके घोड़े थे ना, घोड़े उसको इतना जोर से भगाया कि घोड़े के मुंह से झाग आया और घोड़े बेहोश हो गए। तो रथ से कूदा वो और भागने लगा, तो अर्जुन और भीम ने रथ छोड़ दिया और भी उसके पैदल भागने लगे उसके पीछे। और कुछ देर भागने के बाद में उसको पकड़ा जंगल में जाकर, बालों को पकड़ के ऐसा खींच के लाया उसको, और द्रौपदी के सामने लाया उसको। द्रौपदी जो थी वो पुत्रों पर विलाप कर रही थी, बेचारे उनके पुत्र, जवान पुत्र जो थे, सब लोग सुनिए ध्यान से, उनके जवान पुत्र जो थे उनका उनके सामने मृत्यु हो गई थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्रौपदी विलाप कर रही थी, तो वो द्रौपदी का गुनहगार था, इसलिए भीम और अर्जुन उसको कैद करके बालों को पकड़ के घसीट कर लेके आए द्रौपदी के सामने। बोला, द्रौपदी देवी इसका न्याय करो, बोलो क्या कर किया जाए इसके साथ में। तो उनको उम्मीद थी कि द्रौपदी कहेंगे मार डालो इसे, ये मेरा अपराधी है, ये मेरा गुनहगार है, दंड दो उसको मृत्यु का। द्रौपदी अभी देखो, जब स्ट्रेस आया तो अश्वत्थामा ने अपना अंदर का मसाला दिखाया कि वो क्या चीज़ है। अभी द्रौपदी पर स्ट्रेस है, द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई है, तो आप कहेंगे कि द्रौपदी को बोलना चाहिए मार डालो उसको, वध करने योग्य है। लेकिन द्रौपदी क्या बोलती है, ये स्पिरिचुअलिटी है, आपके अंदर क्या परिवर्तन होता है भक्त बनने के बाद, इसका ये प्रमाण है, हम क्या बन सकते हैं, अनाकलनीय है ये, इनकंसीवेबल जैसा हम बन सकते हैं। जैसे द्रौपदी ने उत्तर दिया, वो कहती है कि मेरे 5 पुत्रों के मरने के बाद में जो दुख मुझे हुआ है उसका मैं अनुभव कर रही हूं, अगर इसका वध करेंगे तो गुरु माता को जो दुख होगा उसका मैं ऑलरेडी अनुभव कर रही हूं। भक्त कभी भी उसको दुख होने पर दूसरों को दुख होना चाहिए सोचता नहीं है, वो दूसरे को समझ दुखी बनाना नहीं चाहता, वो अपना दुख खुद भोगता है। और जो भक्त नहीं होता है वो अगर खुद दुखी है तो दुनिया को दुखी करना चाहता है वो। जैसे ड्रग एडिक्ट फॉर एग्जांपल, ब्राउन शुगर एडिक्ट, वो अगर एक बार फंस गया, वो समझ गया कि मैं फंस गया, तो वो 4, 5, 10, 15 लोगों को भी उसमें खींचेगा और अपना जंग टोली बना देगा, अपना सबको ऐसे दोस्ती दोस्ती में खींच कर लेके आएगा, वश कर करेगा उनको, मैंने देखा मेरी आंखों से। लेकिन द्रौपदी उस दुख में भी सोच रही है कि जो दुख मुझे मिला है वो जिन गुरु की पत्नी ने, जिस गुरु ने हमको इतना ज्ञान दिया, अपने मेरे पतियों को सभी लोगों को सिखाया, विद्या दिया, उनके पत्नी को ऐसा कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी 7 माताएं बताई गई है शास्त्र में, उनमें से एक माता है गुरु माता। गुरु माता अपनी माता जैसे होगी, तो जो कष्ट मुझे हो रहा है मेरी माता को नहीं होना चाहिए, इसलिए इसे मत मारो, इसको छोड़ दो, दंड देना ही, क्योंकि भीम तो पता है ना कैसे भीम हमारी उठा के पटक दूं, ये उनका स्टैंडर्ड डायलॉग था जब भी बात होती थी तो दुर्योधन के बारे में जब भी कुछ बात होती थी उसका एक ही डायलॉग था, उठा के पटक दूं। रेडी थे हमेशा, वो चाहे लीगल लेजिटिमेट इलेजिटिमेट कोई भी तरीका हो दुश्मन को स्मैश करने का, बस ये उनका मूड था, तो वो रेडी थे उसको कुचलने के लिए। लेकिन पत्नी बोल रही नहीं उसको मत करो, तो बोले ऐसा दंड दो कि उसको याद रहेगा और दोबारा नहीं करेगा वो। तो भगवान को भी क्रोध आया उसके ऊपर, अश्वत्थामा के साथ। भगवान ने क्या किया, उसके ऊपर एक मणि था जो उसके जीवन का शक्ति का स्रोत था, सारी शक्ति सारा तेज ब्रह्म तेज भी उसी मणि की वजह से था, तो उस मणि को भगवान ने उखाड़ लिया उसके सर से, तो खून बहने लगा। आप सोचिए ऐसा शाप जो है ना वो भगवान ने आज तक किसी को नहीं दिया है, मुझे जहां तक मैंने पढ़ा है ऐसा मुझे कभी लगा नहीं कि भगवान स्वयं किसी को शाप दिया है। आई हैव नॉट हर्ड, भगवान ने वध किए बहुत सारे, लेकिन इतना भयंकर शाप आपने पढ़ा होगा तो याद होगा, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन इतना भयंकर साप उन्होंने अश्वत्थामा को दिया कि तुम्हारी जख्म कभी भरेगी नहीं, तुम्हारे जख्म से खून हमेशा बहता रहेगा, इसमें इतनी पीड़ा होगी तुमको कि तुम मरना चाहोगे इस पीड़ा के सामने, मतलब मृत्यु का दर्द चलेगा मुझे लेकिन ये पीड़ा नहीं चाहिए मुझे, इतना तड़पोगे आप, इतना दर्द होगा आपको, और उस दर्द का विश्व में कहीं इलाज नहीं होगा, और आप चाहोगे मरना लेकिन आप मरोगे भी नहीं, सदा जीवित रहोगे। इमेजिन, दिस इज थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री टॉर्चर है पूरा, छुटकारा ही नहीं है आपको। अरे दर्द होगा तो दवा लूंगा, नो, कोई दवा काम नहीं करेगी, मरना चाहोगे तो मर भी नहीं सकते, जाओ गेट आउट, चले जाओ यहां से। इतना भयंकर शाप जो सबको तारने वाले हैं उसके मुंह से प्राप्त हुआ, और क्या आपका आसरा क्या है अभी, कहां जाओगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने आपका स्टैंप लगा दिया आपके ऊपर कि मरना है आपको, दुख भोगना है, कौन बचाएगा आपको? तो बड़ा पीड़ा को अनुभव करने लगा हो इस शाप की वजह से, और तड़पता रहा हो, ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा जी बचाओ मुझे, बोले सॉरी क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए, आपका काम आपने ऐसा किया है, और वो काम तो छोड़ो, काम के बाद में जो भगवान ने शाप दिया आपको, हमारे भगवान ने शाप दिया है, अगर हम आप कुछ होता तो हम उनके पास जाके कुछ विनती करते हैं, कुछ करो, लेकिन उन्होंने ही आपको शाप दिया है, हम क्या कर सकते हैं अभी आपके लिए, व्हाट वी कैन डू, चाहते हुए कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे स्वामी ने आपको शाप दिया है जो आपको बचा सकते हैं, जिनके पास हम जाकर विनती कर सकते हैं, उन्होंने ही आपको शाप दिया है, सारे दरवाजे बंद है आपके लिए, सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। मेरे ख्याल से पहले शिवजी के पास गए वो, और शिवजी ने उनको ये बताया कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, फिर ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने भी बताया, तो बहुत गिड़गिड़ाए, तो ब्रह्मा ने बताया कि मुझे ना एक ही रिमोट दूर का एक चांस लगता है, अगर कुछ होना है तो, चांस तो कुछ नहीं आपका, लेकिन फिर भी कोशिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बरसाने में जाओ और वहां जाके राधा रानी को पुकारो, तो वहां कुछ हुआ तो फिर तकदीर अच्छी आपकी। तो वो तड़पता हुआ, दुख भोगता हुआ, अनंत वेदना को सहन करता हुआ अश्वत्थामा जो है वो बरसाने में आया, और यहां पर एक 4 किलोमीटर आगे खदीर वन के रास्ते पर एक वन है, उसका नाम है पिपासा वन। पिपासा का मतलब क्या होता है? पिपासा यानी एक होती है प्यास और एक होती है पिपासा, तीव्र प्यास, वेरी सीवियर थर्स्ट, तो उसको पिपासा कहते हैं, मिलने की तृष्णा, बहुत तीव्र तृष्णा, उसको पिपासा कहते हैं। तो उस वन में राधा और कृष्ण भगवान अपने मिलन की जो तीव्र प्यास है वो वहां पर रास लीला करके बुझाते हैं, ऐसा वो सुंदर वन है। तो उस वन में ये बैठ गए अश्वत्थामा आकर, और रो रो कर पुकारने लगे, एक तो पीड़ा है ही यहाँ की, ऊपर से असहाय भी है, सबने ठुकरा दिया हुआ है ना, कितनी लाचार स्थिति, देखो आप जो सबसे दयालु स्टेशन है वहीं फेल हो गए, वो जो सब पर करुणा करने वाले हैं उन्होंने ठुकरा दिया, तो क्या बचा क्या उसके लिए, इतनी बेकार अवस्था है, किसी के नहीं होनी चाहिए ऐसी अवस्था, दुश्मन की भी नहीं होनी चाहिए। तो वो आकर यहाँ रोने लगा, रो रो कर राधा रानी को, और ऐसा कहते हैं कि इतना दर्द का उसने अनुभव किया, उसके बहुत सारी पाप की शुद्धि हो गई उसके अंदर, इतना मतलब प्रॉब्लम वो कर्तृत्व में नहीं होता है, प्रॉब्लम प्रवृत्ति में होता है, वो प्रवृत्ति आपसे बार बार पाप करवाती है, पाप एक जगह पर है, पाप करने की प्रवृत्ति दूसरी जगह पर है। रूप गोस्वामी समझाते हैं, एक होता है पाप का बीज, एक है पाप की प्रवृत्ति, प्रोक्लिविटी कहते हैं उसको, और इसके वजह से होता है पाप, उसके बाद में होता है पाप का फल, और पाप के फल के बाद में होता है दुख, और दुख के बाद में होता है बंधन, तो फिर हमको जन्म मृत्यु के बंधन में वो फंसा देता है। तो पाप का बीज नष्ट होना चाहिए, और वो केवल हरिनाम से नष्ट हो सकता है, और कोई भी कर्मकांड, नदी का स्नान, दान धर्म, पूजा पाठ, तीर्थों की यात्रा, और कुछ भी करो आप, पाप बीज नष्ट नहीं होता है, पाप फल नष्ट होगा, लेकिन पाप प्रवृत्ति और पाप बीज नष्ट नहीं होता है, वो केवल शुद्ध भक्ति से और केवल कृष्ण नाम से नष्ट हो सकता है। तो यहां पर आकर राजा रानी को पुकार रहे हैं। यथावकाश राजा रानी इनको दर्शन देती है पूरे पश्चाताप के साथ। उसकी क्या योग्यता थी उस समय राधा रानी का दर्शन करने की? पूरे पश्चाताप के साथ वो पुकार रहा था। पहले जब मारा तो बच्चों को तो कोई उसको मन में भावना नहीं थी, लेकिन इतना दुख होगा उसने तो पूरा पश्चाताप होगा उसके, मैंने अच्छा नहीं किया, सही नहीं किया, पूरा जीवन मेरा गलत रास्ते पे गया, अभी कम से कम लास्ट में आके मैं पुकार रहा हूँ। आप सोच सकते हैं कैसे पुकारा होगा उसने, जिसको ये शाप मिला है कि आपका दर्द मिटेगा नहीं, कोई दवा नहीं चलेगी आपके ऊपर, आप मरोगे भी नहीं, जीवित रहोगे, तड़पते रहोगे, बहते हुए जख्म में दुनिया भर तड़पते रहोगे। इतना शाप देने के बाद में कितना पीड़ा सहन किया होगा उसने। तो राधा रानी ने उसको दर्शन दिया, जिसको कृष्ण ने शाप देकर भगा दिया था उसको राधा रानी ने दर्शन दिया और तुरंत उसको आशीर्वाद दिया कि आपका जख्म तुरंत भर जाएगी, आपकी वेदना तुरंत मिट जाएगी, तुरंत उसकी तत्क्षण उसकी वेदना खत्म हो गई। जिसको कृष्ण ने ठुकरा दिया उसको राधा रानी ने तार दिया। इतनी करुणा आज तक इसने नहीं दिखाई, ऐसी करुणा देवी है राधा रानी। फिर जैसे ही राधा रानी ने दर्शन दिया और वेदना मुक्त कर दिया तो शुद्ध भक्त बन गया वो, बिकेम प्योर डिवोटी। तो राधा रानी ने उसको आदेश दिया अभी यहीं रहो विपासा वन में, ये मेरा प्रिय वन है, मैं मेरे प्रियतम को यहाँ मिलती हूँ, बहुत दूर नहीं पास में यहाँ पर। उसको पिसाया कहते हैं, पिसाया लोकल लैंग्वेज में, पिपासा वन को। और उसको और एक भी नाम है, उसका नाम है अश्वत्थामा की झाड़ी। उसमें ना ऐसे प्रकार का आयोजन है, बहुत विशाल वन है वो, और आपको जब एंट्री करेंगे तो लगेगा कि कितना घनदार जंगल है, अंदर जाएंगे तो बहुत विशाल खुली जगह मिलेगी आपको। और दो कुंड है, राधा कुंड और श्याम कुंड उसके अंदर। जब रास में जब भगवान को प्यास लगी थी तो राधा रानी ने कुंड बनाकर जल पिलाया था, वो राधा कुंड। तो राधा रानी को प्यास लगी थी तो भगवान ने जल पिलाया था, तो वो है श्याम कुंड। ऐसे दो कुंड है वहाँ पर, और जगह जगह पर लकड़ियों के ढेर ऐसे बना के रखे हुए हैं सब जगह। आप जाएंगे देखेंगे यहाँ पर लकड़ियाँ ऐसे लगा के रखी है, सजा के रखी है, ढेरा क्या कहते हैं उसको, स्टैक करके रखी हुई है, अनेक जगह पर रखे हुए। उसका क्या रहस्य है? अश्वत्थामा को राधा रानी ने कहा ये मेरा बहुत प्रिय वन है, इसकी रक्षा करो, और इसकी लकड़ी जो है वो केवल ठाकुर जी की सेवा में जानी चाहिए, किसी भी स्वार्थ के हेतु में उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। तो लोग जो लकड़ी तोड़ते हैं उसकी, वो अगर घर में कोई वैष्णवों का भंडारा है या कोई पूजन है आपके घर में, कोई ठाकुर जी का उत्सव है या भगवान की सेवा में कुछ चूल्हा जलाना है, तो लकड़ी लेके जाते हैं, और जैसा ही कार्य समाप्त हुआ लकड़ी बच जाती है, उसको वापस आके जंगल में छोड़ते हैं, अच्छा रख स्टैक करके रख देते हैं। इसलिए आपको जगह जगह लकड़ी मिलती है, और जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए लकड़ी वहाँ से उठाता है वो या तो अंधा हो जाता है, या तो उसको पैरालिसिस होता है, या तो मर जाता है। अभी हमारे कैंप में 4 या 5 साल पहले एक जवान लड़का ऐसा मस्ती में जाके को लकड़ी तोड़ के आया, वो खदीरवन है वहाँ पर आगे 3 किलोमीटर आगे, खदीरवन का लड़का था वो लकड़ी लेके खदीरवन पहुंचा तो वहीं अंधा हो गया वो, तो बड़ा परेशान हो गया वो, उसको समझा नहीं क्या हुआ, अचानक अंधा कैसे हो गया। तो बुजुर्ग लोग जानते थे यहाँ की लकड़ी अगर स्वार्थ के लिए लेके आएंगे तो अंधा हो जाएगा, तो बोले जा जल्दी छोड़ के आ उसको, बोला कोई दिखाई नहीं पड़ता है, कोई लेके गया उसको, और जैसे ही लकड़ी छोड़ी वापस दृष्टि वापस आ गई उसकी, तो उसको यकीन हुआ कि बुजुर्ग लोग जो कहते हैं वो झूठ नहीं कहते हैं, उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया उसने। इसलिए आप लोग ट्राई मत करो, सुनो और समझो। नो नीड टू ट्राई वंस मोर। उसको बेचारे को रखने पर वापस आ गई, आपकी नहीं आई तो इधर कैंप में भी कुछ नहीं होगा उसका, क्योंकि महारानी ने आदेश दिया इसको अंधा करो, तो तुम्हारा कौन सा कैंप है इधर ठीक करने के लिए, हमारे पास कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है, राधा रानी के द्वारा अंधा किया गया आदमी को हम दृष्टि दे सकते हैं। इसलिए वहाँ पर सब ढेर लगे हुए हैं, अश्वत्थामा का आदेश दिया इसकी रक्षा करो। और आज भी इस समय भी अश्वत्थामा उस झाड़ी में उस वन में तप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। और जो उधर के लोग, बहुत लोग बताते हैं कि जो लोग संत हैं वहाँ पर भजन कर रहे हैं, सच्चे संत जो वहाँ रहकर भजन करते हैं, उनको अश्वत्थामा के दर्शन भी होते हैं और वो सबकी रक्षा करते हैं। देखो कितना परिवर्तन हुआ, देख सकते हैं आप, इतना पापी व्यक्ति, भगवान के शाप से ग्रस्त इतना पापी व्यक्ति, कितना चेंज हो गया उसके अंदर, संत बन गया वो, संतों का रक्षक बन गया। पहले भक्तों का हिंस हत्यारा था वो संतों का रक्षक बन के आज जी रहा है। ऐसे कुछ सात जीव हैं, भगवान ने उनको चिरंतन बना दिया है, जैसे जाम्बुवंत है, हनुमान है, वैसे अश्वत्थामा भी है, उनको जब तक सृष्टि है तब तक वो जीवित रहेंगे। लेकिन भगवान के शाप से वो जब तक सृष्टि है तब तक तड़प तड़प कर रहने वाला था, राधा रानी के वरदान से वो भी आनंद से रह रहे हैं, भजन करते हुए दिव्य आनंद का अनुभव करते हुए रह रहा है, सोचो आप। और हम लोग भी इसी धाम में आए हैं, उसी राधा रानी के साथ हमारा अभी आदान प्रदान हो रहा है, हम लोग उसी क्षेत्र में हैं जहाँ पर अश्वत्थामा बैठकर रो रो के पुकार रहे थे और उनको दर्शन दिया उन्होंने और इतनी बड़ी पीड़ा से मुक्त कर दिया, हम भी उसी जगह बैठे हुए हैं। इसलिए पुकारने को मत भूलना, हाँ, इधर उधर मत देखना क्या ब्रेकफास्ट में क्या है, लंच में क्या है, डिनर में क्या है, वो नहीं मिला, वो खत्म हो गया, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स, दुनिया पड़ी है वो सब भोग लेने के लिए, लेकिन यहाँ का जो समय है वो बहुत कीमती है। इसलिए हम बार बार चिल्लाते रहते हैं, पुकारो पुकारो, इधर उधर मत देखो, जब भगवान का नाम पुकारा जा रहा है अपने आप को अर्पण करो उसके अंदर, जैसे अग्नि में हम लोग स्वाहा करके समिधा अर्पण करते हैं, अपने आप को इस हरिनाम संकीर्तन की अग्नि में अर्पण करो, डोंट हेजिटेट, उस पर कंजूसी मत करो, वहां पर सोच विचार मत करो, दिमाग मत लगाओ, दिल लगाओ, जब वो दिल लगाएंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, इसी यात्रा में सफल हो जाएगा, जीवन की परिपूर्ति आपको इसी यात्रा में मिलेगी, अगर आपकी चेतना सही जगह पर स्थित है तो। अगर आप यहां पर हृदय उदार हृदय बनकर अगर पुकारते हो तो यही पूर्ति हो जाएगी आपकी, ये शक्ति इस धाम के अंदर, ये धाम कोई साधारण धाम नहीं है, इस धाम को परम दयालु परम करुणा देवी राधा रानी के चरणों का स्पर्श हुआ है, जिसमें हम बैठे हैं, इधर यहाँ भोजन करते हैं, इधर की हवा खाते हैं, इधर का जल पीते हैं, साधारण धाम नहीं है, ये रसों का सागर है, यहाँ पर रसों का निर्माण इस राधा रानी के चरणों से होता है, वेदों का निर्माण राधा रानी के नुपुर के ध्वनि से होता है, तो सारा रस कृष्ण को राधा रानी से प्राप्त होता है, जितने भी सद्गुण कृष्ण के अंदर है राधा रानी की कृपा से प्राप्त होते हैं उनको, विश्वभर में वो भगवान के रूप में जाते हैं, उनका स्रोत जो है, उनकी शक्ति जो है वो राधा रानी है। अगर प्रेम अगर उसको सागर के रूप में आप समझते हो, समझो, तो उस प्रेम रूपी सागर का जो नवनीत है, जो मंथन निखर करके निकालते हैं, वो नवनीत राधा रानी है, मतलब संपृक्त प्रेम है वो, कॉन्सेंट्रेटेड लव, जिस पर कृष्ण भी निर्भर है, जो कृष्ण की संजीवनी है स्वयं, उसको कृष्ण संजीवनी कहते हैं, उसका धाम है ये। लगता है गटर है, ये है वो है, लोग ऐसे घूम रहे हैं, पॉकेट मार रहे हैं, लेकिन उसके परे चले जाओ और देखो यहां पर क्या मुमकिन है, क्या हो सकता है, यहां पर सब आशाओं का उगम यहां पर है, जितनी भी आशा हम कर सकते हैं कि होप, होप अगेंस्ट होप, उसका धाम है ये। बाकी कृष्ण के दरवाजे पे जाएंगे तो शायद आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अनन्य चिंता अनन्य जो करते हैं उनको ही देते हैं, अनन्य चिंतयंतो माम यो जनो परिपासते। राधा रानी इतना सा प्रेम करने पर भी भोली भाली राधा रानी हमको स्वीकार कर लेती, इसलिए आसान काम यही है कि हम श्री कृष्ण के भक्ति को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, लेकिन राधा रानी के चरणों के माध्यम से जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको उनकी भक्ति मिलेगी, क्योंकि राधा रानी जब सिफारिश करती है किस जीव की तो कृष्ण उसको मना नहीं कर सकते। राधा रानी ने उसको माफ कर दिया अश्वत्थामा को, तो कृष्ण ने आके उधर क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मैंने श्राप दिया उसको, जानती नहीं कैसे उसको उद्धार कर सकती हो, नहीं वो ऐसा एक अधिकार स्थान है जहां कृष्ण भी कुछ बोल नहीं सकते, इतनी दयालु है वो, बहुत भोली भाली है, बहुत सरल हृदय है, केवल सद्गुणों को देखती है, केवल उसके हृदय में पश्चाताप था उसको देखा उसने, कि पाप को नहीं देखा, तार दिया उसको, ऐसे अनंत पापियों को तारती है, हम भी सब लोग उनमें से एक हैं। अश्वत्थामा का इतना क्या कहते हैं उसको, दुर्गुण गान कर रहे हैं हमारे कोई अच्छे गुण नहीं है जो हम ऐसे पेश कर सकते हैं राधा रानी के दरबार में। लेकिन यहां पर सब लोग उस दरबार में बैठे हैं राधा रानी के कृपा छत्र वाले दरबार में। तो यहां पर आपके अपनी चेतना को मति को यहां वहां मत भटकाना, वो एक बैड लक होगा हमारा अगर हम ऐसा करेंगे। यहां पर आकर अगर हमारा मन यहां वहां भटकता है, इंद्रियों के भोगों को ढूंढता है, कुछ भोग चाहिए, कुछ देखूं यहां पर क्या मिलता है, तो बैड लक है हमारा, दुर्लक है वो, दुर्भाग्य हमारा। उस दुर्भाग्य को मिटा दो, अपनी चेतना को सही जगह पर रखो, अच्छे लोगों के संग में रहो और ये देखो कि राधा रानी की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है। जिसने आपको यहां बुलाया है वो आपको दया करेगी आपके ऊपर, वो दया की देवी है। अरे तेरे दर पे आया मैं दया की देवी, ओ दया की देवी तेरे मैं दर पे आया हूं, श्रद्धा के फूल लाया हूं, मुझे स्वीकार करो, मुझे तार दो, मुझे कृष्ण का और आपका बना दो। क्यों नहीं बनाएंगे, आपका आपकी पुकार सुनने के लिए बैठी है वो। हम पुकारते नहीं है तो सुनेगी कैसी, वो पुकारते भी उस पर कशिश नहीं है, जोर नहीं है, उसमें दम नहीं है, उसको पुकारो। जब ऐसे हृदय से पुकारेंगे तो आपको प्रतिसाद मिलेगा, और जिसको प्रतिसाद मिला है वो कभी भूल नहीं सकता है उसको। इसलिए सबको पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबकी सुनती है, सबके सुनने के लिए बैठी है, उसको पुकारो और अपने जीवन को धन्य करो। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।